श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
एक बार मसीह मुझको जरा दिल में जगा दे दे, एक बार मसीह मुझको जरा दिल में जगा दे। भटके हुए राही को सही राह दिखा दे, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे। समंदर में मैं डूबा हूँ मसीहा, पापों के समंदर में मैं डूबा हूँ मसीहा, नजरों से गिराना मुझे हाथों से उठा ले, नजरों से गिराना मुझे हाथों से उठा ले। भटके हुए राही को सही राह दिखा दे, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे। बचाने का तेरा वादा है मुंजी, डूबों को बचाने का तेरा वादा है मुंजी, फिर क्यों नहीं आता मेरी नैया को बचाने, क्यों नहीं आता मेरी नैया को बचाने। भटके हुए राही को सही राह दिखाने, एक बार मसीह मुझे को जरा दिल में जगा दे।
आ
जाने से तेरे जाग उठी जीने की उमंगें, आने से तेरे जाग उठी जीने की उमंगें, पाया तुझे तो मिल गए जीने के बहाने, पाया तुझे तो मिल गए जीने के बहाने, भटके हुए राही को सही राह दिखा दे एक बार मसीह मुझे तो, जरा दिल में जगा दे रे एक बार मसीह मुझे तो, जरा दिल में जगा दे रे।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर अपने दास जकरिया के द्वारा इसराइलियों को, जो उसकी चुनी हुई प्रजा है, उनके दंड की बातों को बता रहा है और वह यह भी बता रहा है कि वह उन्हें क्यों आशीष नहीं दे रहा है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य और जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऐसा अवसर नहीं है, परंतु आपने हम सबों को यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी एक साथ आपके वचन पर ध्यान कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक आपके वचन के ज्ञान को पाकर अपने जीवन में अनंत शांति और उद्धार के आनंद को पा सके। आज के वचन पर अपने आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरिया नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 8 उसके 1-3 पद तक का अध्ययन किया था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हमने यह देखा था कि परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वह सियोन अर्थात इसराइल के लिए जलन रखता है, अर्थात अगम्य प्रेम रखता है, और वह वहां आकर यरूशलेम में वास करेगा। उस समय यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा तथा यहोवा के भवन का पर्वत पवित्र कहलाएगा। वहां जाति जाति के लोग धर्म का मार्ग सीखने के लिए आएंगे। वह सर्व शांति का युग होगा, तब युद्ध नहीं होंगे। यरूशलेम फिर से हरा भरा हो जाएगा और बड़े बूढ़े वहां स्वतंत्र बैठेंगे। तथा बच्चे निश्चिंत होकर खेलेंगे। तो आइए हम अपने अध्ययन के क्रम में आज आगे बढ़ेंगे और जकरिया नबी की पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। यरूशलेम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छा स्थान होगा। हो सकता है कि अभी बहुतों के लिए कठिन समय है, परंतु वह समय जरूर ही अच्छा होगा। मेरे मित्रों, मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूं कि जो मैं जानता हूं कि आज जनमान्य नहीं है। हमारे वरिष्ठ नागरिक केंद्र स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। मैं अपने घर के बारे में कहना चाहूंगा कि मेरे दादी जी ने कहा कि वहां जाकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई, क्योंकि वह भी मेरे साथ वहां जा चुकी है। वह मुझसे सहमत है क्योंकि वहां आप केवल सफेद बाल ही देखते हैं, परंतु भविष्य में यरूशलेम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित स्थान होगा जहां उनका मान सम्मान होगा और वे वहां जीवन का आनंद लेंगे। यह क्या ही धन्य बात है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय के 5 पद में आगे लिखा है, नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। इसका अर्थ है कि उस समय वाहन नहीं होंगे और हमें प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। यरूशलेम की सड़कें खेल का मैदान बन जाएंगी। यरूशलेम वृद्ध, युवा और बच्चों का स्थान होगा। मेरे विचार में दादा दादी, नाना नानी के लिए भी नाती पोतों को देखना अच्छा है। दूसरी ओर नानी पोते अपने दादा दादी नाना नानी के गले में बाहें डालकर कहेंगे कि उनसे वे प्रेम करते हैं, तो कितना अच्छा होगा। बच्चों को बहुत प्रेम की आवश्यकता होती है। यह एक अति मनोहर दृश्य होगा, वृद्धावस्था और बचपन का मिलाप। परंतु यह प्रभु राज में ही संभव है, अभी नहीं। उस समय यरूशलेम पृथ्वी की राजधानी होगा और प्रभु यीशु राजा होगा, परंतु कलीसिया अंतरिक्ष में नए यरूशलेम में वास करेगी। आप कहेंगे, हम तो सोचते थे कि कलीसिया प्रभु यीशु के साथ होगी। जी हाँ, कलीसिया प्रभु यीशु के साथ होगी, परंतु उस समय प्रभु यीशु को स्वर्गिक यरूशलेम और पृथ्वी की राजधानी यरूशलेम आने जाने में एक सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा। यह क्या ही अद्भुत समय होगा। जकरिया 8 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। बेतेल से आने वाले इसराइलियों ने देखा कि यरूशलेम का मंदिर बन चुका था और यरूशलेम में समृद्धि थी। उन्होंने आश्चर्य से कहा, निसंदेह परमेश्वर यहां है और इन्हें आशीष दे रहा है। परमेश्वर कहता है, तुम तो आज को देखते हो, भविष्य को नहीं जिसे मैं देखता हूं। यह तो भविष्य की तुलना में कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, देखिए कितनी बार लिखा है सेनाओं का यहोवा। जकरिया 8 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है पूर्व से, अर्थात बेबीलोन से, जहां से वे स्वदेश लौटे थे। आज भी अनेक यहूदी यमन से आ रहे हैं और बताया जाता है कि पूर्वी क्षेत्र में अभी भी बहुत यहूदी हैं। परमेश्वर कहता है उसे पूर्व से और पश्चिम से ले आऊंगा। यह पश्चिम क्षेत्र कौन सा है? मेरे विचार में यह अमेरिका है। जिस दिन यहूदी अमेरिका से चले गए उस दिन न्यूयॉर्क शहर तो वीरान हो जाएगा, क्योंकि वहां इतने यहूदी हैं जितने इसराइल देश में भी नहीं हैं। परमेश्वर उन लोगों से कहता है, यदि तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारा इसराइल देश अब अच्छा है तो भविष्य की कल्पना करो जिसे मैं देख रहा हूं। जकर्या 8:8 में आगे हमें बताता है, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। आज के यहूदी उसके जन नहीं है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपके विचार में क्या यहूदी परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है? मैं कहता हूं नहीं। आज परमेश्वर के चुने हुए लोग कलीसिया हैं। पहला पत्रस की पत्री 2:9 में लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। मेरे प्रियो, पत्रस किसे संबोधित कर रहा है? कलीसिया विश्वासियों की देह को संबोधित कर रहा है, जिसमें यहूदी और अन्य जाति मसीह में बुलाए गए और एक हैं। आज संसार में एक ही भाईचारा है जो प्रभु यीशु की कलीसिया में है। एक दिन कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी और तब परमेश्वर अपने चुने हुओं इसराइल को स्वदेश लौटाएगा। मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत समय होगा। जकर्या के दर्शनों में हम देख चुके हैं कि वह इसराइलियों का शोधन करेगा। उन्हें शोधन की आवश्यकता है, जैसे हम कलीसिया में करते हैं। कलीसिया लहू से खरीदी गई और लहू से धोई गई है। क्यों? क्योंकि हम पापी हैं। यद्यपि हमारा उद्धार हो चुका है, हम अब भी उद्धार प्राप्त पापी हैं, परंतु एक दिन मैं पवित्र जन बनूंगा। इस समय मेरा जीवन पवित्र नहीं है, परंतु एक दिन मैं प्रभु यीशु के स्वरूप हो जाऊंगा। जी हाँ, वह एक महान दिन होगा। इसराइली भी बदले जाएंगे, वे नए हो जाएंगे। परमेश्वर कहता है वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। ऐसा कब होगा? जिस दिन वे यरूशलेम में होंगे। आज वे यरूशलेम में नहीं हैं। आज यरूशलेम में अरब जन वास कर रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। जी हां, आज वे सच्चाई में नहीं हैं। वे आज भी प्रभु यीशु को मसीह नहीं मानते हैं। आज वहां परमेश्वर का नाम लगभग नहीं के बराबर है। इसराइल अपने परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, जबकि अरब निडर होकर कहते हैं कि यदि उनका ईश्वर चाहा तो ऐसा होगा। परंतु प्रभु राज में मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा और परमेश्वर इसे होने देगा। मेरे प्रियो, धर्म का अर्थ है सब उचित होगा। पद 9-19 में हम देखते हैं कि परमेश्वर बेबीलोन से आने वाले यहूदियों से आशा करता है कि वे भविष्यद्वक्ताओं हग्गै और जकर्याह से महिमामय भविष्य की चर्चा सुने, क्योंकि वे पूर्वकालिक स्वदेश लौटने वालों के साथ नहीं आए थे। वे परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन से मुक्त नहीं किए गए हैं, उन्हें आज्ञाएं मानना है। और हगै तथा जकर्या भविष्यद्वक्ता की बातें उन्हें सुनना है, ताकि परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और उनके जीवन में आशीष दे। मेरे प्रियो, हम जकर्याह की पुस्तक 8:9 में पढ़ते हैं, लिखा है, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात मंदिर के बनने के समय में थे। उनके भविष्यद्वक्ता हग्गै और जकर्याह थे, उन्हें मंदिर निर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाले भी वे ही थे। इन नव आगंतुकों को जो अभी आ रहे हैं, वे भी मंदिर निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे और उन्हें मंदिर निर्माण में सहयोग भी दे रहे थे। मेरे मित्रों, हम जकर्याह 8:10 में आगे पढ़ते हैं, उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वालों को चैन मिलता था और न जाने वालों को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। यहां पर लिखा हुआ है कि उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा। दूसरे शब्दों में, उस युग में इसराइल देश में बेरोजगारी बहुत थी। लिखा है, वरन सताने वालों के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न ही जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। मेरे मित्रों, आज हमारे देश से परमेश्वर का नाम लगभग समाप्त हो चुका है, और यदि हम नाम लेते भी हैं तो व्यर्थ में। आज राष्ट्रीय एकता के प्रयासों के उपरांत भी दूरियां प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को अलग कर दिया है। परमेश्वर ने इसराइल से कहा, तुम्हारे मध्य शांति नहीं है, तुम में विभाजन है, हमारे चारों ओर अव्यवस्था और हिंसा फैली हुई है। हमारे राजनेता सोचते हैं कि उनके पास हर समस्या का समाधान है, परंतु उनकी समस्या यह है कि उनके पास समाधान नहीं है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं कि समाधान केवल परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर कहता है, यशाया नबी की पुस्तक यशाया 57:21 में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। समाधान यही है कि हम परमेश्वर को पुनः परिदृश्य में ले आएं। जी हां, हमें उसकी ओर फिरने की आवश्यकता है। हम उससे दूर भागकर अपने जीवन में, राज्य में, देश में शांति नहीं ला सकते हैं। जकर्याह 8:11 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा वर्ताव न करूंगा जैसा कि पहले के दिनों में करता था, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर उनसे कहता है, मैं तुम्हें न तो वर्तमान और न ही बंधुआई में जाने से पूर्व के समान आशीष देना चाहता हूं, परंतु मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जकर्याह 8:12 में लिखा है, क्योंकि अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उस देश को कुछ समय समृद्धि प्रदान की थी, परंतु जब उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया तब उन्हें कठोर दंड दिया गया। रोमी तीतुस ने यरूशलेम को उजाड़ दिया और यहूदियों को संपूर्ण रोमी साम्राज्य में तितर बितर कर दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार वे आज तक स्वदेश नहीं लौट पाए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें वापस लाएगा और उन्हें शांति देगा। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं और उसकी आज्ञाओं के खिलाफ चलते हैं और उन कार्यों को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, तो निश्चय ही जाने कि आप अपने जीवन में थोड़े समय के लिए आशीषों को पाते हुए देखेंगे, परंतु वह आपके साथ नहीं रहेगा। आपको चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, अपने पापों से प्रायश्चित करें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक बनाएं, ताकि परमेश्वर का आशीष आपके साथ सदैव बना रहे। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन इस समय क्या है। क्या आज आप अपने पारिवारिक जीवन से दुखी हैं? बच्चों के साथ की समस्याओं से दुखी हैं? क्या बच्चे अपने माता पिता से दुखी हैं? अपने नौकरी से आप परेशान हैं? या अन्य प्रकार की समस्याएं जो आपके जीवन में अभी है? आप निराश मत होइए, आपके पास उपाय है, आपके लिए एक सहयोगी है। आप प्रभु यीशु के पास अभी इसी समय आ जाइए, अपनी सारी बातों को उसके सामने रख दीजिए, अपने हर एक गलतियों के लिए, पापों के लिए पश्चाताप कीजिए और निश्चय जानिए कि प्रभु यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे, आपके जीवन में शांति और आनंद देंगे और आपकी दूरियां जो परमेश्वर से काफी दूर हो गई है फिर से उसकी निकटता में होगी। यह समय और निर्णय आपका है। मेरे श्रोता मित्रों, यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को ग्रहण करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें और अगुवाई करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
ये मौन मेरा जो कहता है, मेरे प्रभु सुनता है, इस संध्या के वीराने में तू ही तो मेरे संग रहता है। ये मौन मेरा जो कहता है, मेरे प्रभु तू संध्या के वीराने में।